नमो वीतरागाय, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो वत्सायाणम, नमो लोए सव साहुणम, ऐसो पंचनमुकारो सव पावप्पणाशनो मंगलाणम च सव्वेसिम परमं हवै मंगलम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। सर्वज्ञ श्री दादा भगवान का आत्मविज्ञान ऑडियो कैसेट इन बुक, सारी बुक दो ऑडियो कैसेट्स में है। दिस इज नाउ टेप नंबर टू। वी आर कंटिन्यूइंग विद सत्संग विद पूज्य ज्ञानी श्री दादा भगवान, जो कहते थे कि जो आपको दिखते हैं वो दादा भगवान नहीं है, वो तो अम्बालाल मूलजी भाई पटेल है और मैं ज्ञानी हूं और हमारे भीतर में दादा भगवान संपूर्ण प्रकट हैं, जिनकी भक्ति मैं भी खुद करता हूं। ज्ञान विधि क्या है, प्रश्नकर्ता पूछते हैं दादा को कि आपकी ज्ञान विधि क्या है दादाश्री। तो दादाश्री कहते हैं जवाब में कि ज्ञान विधि तो सेपरेशन, अलग करने का, पुद्गल और आत्मा का, शुद्ध चेतन और पुद्गल दोनों का सेपरेशन करने का है। प्रश्नकर्ता पूछते, ये सिद्धांत तो ठीक ही है लेकिन उसकी पद्धति क्या है। तो दादाश्री कहते हैं देने का ऐसा कुछ नहीं होता है, यहां बैठ के ये जैसा है वैसा ही बोलने की जरूरत है। मैं कौन हूं उसका मान, उसका भान, मैं कौन हूं उसका भान ज्ञान कराने का 2 घंटे का ज्ञान प्रयोग होता है, उसमें 48 मिनट आत्मा अनात्मा का भेद करने वाला भेद विज्ञान के वाक्य बुलवाए जाते हैं, वह सबको बोलने के होते हैं। उसके बाद 1 घंटा 5 आज्ञाएं उदाहरण के सहित विस्तृतता से डीपली समझाने में आती है। कि अब इसके बाद क्या जीवन, कि अब इसके बाद का जीवन किस तरह से पूरा करने का है जिससे नए कर्म बंधे नहीं जाए और पुराने कर्म संपूर्ण खत्म होते जाएं, और साथ साथ मैं शुद्ध आत्मा हूं का लक्ष्य कायम रहा करे। अभी नेक्स्ट सब हेडिंग है जरूर गुरु की या ज्ञानी की। प्रश्नकर्ता पूछते हैं दादा मिलने के पहले किसी को गुरु माने हो तो क्या करने का है, तो उसे क्या करना चाहिए। दादाश्री, तो उनके वहां जाना, और नहीं जाना हो तो जाना नहीं, ऐसा कंपलसरी फर्जियात नहीं है। उनको दुख न होवे इसके लिए जाना चाहिए, हमें विनय रखना चाहिए। यहां ज्ञान लेते समय मुझे कोई पूछता है कि अब मैं गुरु को छोड़ दूं, तब हम कहते हैं कि नहीं छोड़ो मत, यहां गुरु के प्रताप से, ये गुरु के प्रताप से तो यहां तक तू आया है, गुरु के वजह से आदमी कुछ मर्यादा में रहते हैं। गुरु न हो तो मर्यादा ही नहीं, और गुरु को कह सकते हैं कि मुझे ज्ञानी पुरुष मिले हैं, उनके दर्शन करने को मैं जाता हूं। कितने लोग तो उनके गुरु को मेरे पास लेके आते हैं, क्योंकि गुरु को भी मोक्ष तो चाहिए ना। संसार का ज्ञान भी गुरु के बिना नहीं होता है, और मोक्ष का ज्ञान भी गुरु के बिना नहीं होता है। व्यवहार के गुरु व्यवहार के लिए हैं, और ज्ञानी पुरुष निश्चय के लिए हैं। व्यवहार रिलेटिव है और निश्चय रियल है। रिलेटिव के लिए गुरु चाहिए और रियल के लिए ज्ञानी पुरुष चाहिए। चैप्टर 7, मोक्ष का स्वरूप क्या है। ध्येय इतना ही चाहिए। प्रश्नकर्ता पूछते हैं कौन सा ध्येय होना चाहिए आदमी का? दादाश्री जवाब देते हैं मोक्ष में जाने का ही, वही ध्येय होना चाहिए। आपको भी मोक्ष में जाना है ना, वहां कहां तक भटकने का है? अनंत अवतार से भटक भटक भटक, कुछ भटकने में भी बाकी नहीं रखा है। जानवर गति में, मनुष्य गति में, देव गति में, सभी जगह पे भटक 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 ही किया हुआ है, किया है। क्यों भटकने का हुआ? क्योंकि मैं कौन हूं वो नहीं जाना, मैं कौन हूं वह नहीं जाना, खुद के स्वरूप को ही नहीं जानते। खुद का स्वरूप जानना चाहिए, खुद कौन है ये नहीं जानना चाहिए। इतने सारे घूमे तो भी नहीं जाना आपने, सिर्फ पैसे ही कमाने के पीछे पड़े हो। मोक्ष का भी कुछ थोड़ा बहुत करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? मोक्ष का भी कुछ थोड़ा बहुत करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? प्रश्नकर्ता कहते हैं करना चाहिए। दादाश्री कहते हैं इसलिए स्वतंत्र होने का जरूरत है ना, ऐसे परवश कहां तक रहोगे? प्रश्नकर्ता कहते हैं स्वतंत्र होने की जरूरत नहीं है, परंतु स्वतंत्र होने की समझ की जरूर है, ऐसा मैं मानता हूं। दादाश्री हां, इस समझ की ही जरूरत है। इतना समझ लिया यानी बहुत हो गया। स्वतंत्र हो सके या ना हो सके वो दूर की बात, पीछे की बात है, परंतु समझने की जरूर तो सही ना। पहले समझ हाथ में आ गई तो बहुत हो गया। हेडिंग, स्वभाव में आने के लिए मेहनत नहीं है। मोक्ष याने खुद के स्वभाव में आना, वही मोक्ष याने खुद के स्वभाव में आना वही, और संसार याने खुद के विशेष भाव में जाना वह। याने कौन सा सरल है? स्वभाव में आना, स्वभाव में जाना वह। इसलिए मोक्ष कठिन नहीं है, हमेशा ये संसार ही कठिन है। इसलिए मोक्ष तो खिचड़ी पकाने से भी सरल है। ये खिचड़ी बनाने के लिए तो लकड़ी दाल चावल चाहिए, भगोना चाहिए, पानी चाहिए, तब खिचड़ी पकती है। जब मोक्ष तो खिचड़ी करने से भी सरल है, परंतु मोक्षदाता ज्ञानी मिलने चाहिए, नहीं तो मोक्ष कभी भी नहीं होता है। करोड़ अवतार जाए तो भी वह नहीं होता है, अनंत अवतार हुए ही है ना, अनंत अवतार हुए ही है ना। हेडिंग, मेहनत से मोक्ष नहीं मिलता। ये हम कहते हैं ना कि हमारे पास आकर मोक्ष ले जाओ, तब लोग मन में सोचते हैं कि ऐसा दिया हुआ मोक्ष क्या काम का, खुद मेहनत किया वगैरह का। तब भाई मेहनत कर ले आना, देखो ना उनकी समझ कैसी अच्छी है, बाकी मेहनत से कुछ भी नहीं मिलता है। प्रश्नकर्ता पूछते हैं मोक्ष दिया जाए या जाए सही, मोक्ष दिया जाए या लिया जाए सही? दादाश्री कहते हैं यह देने लेने का होता ही नहीं, यह तो नैमित्तिक है। आप मुझे मिले वह निमित्त हुआ, निमित्त की आवश्यकता अवश्य है, बाकी कोई देने वाला नहीं है और कोई लेने वाला भी नहीं है। देने वाला किसे कहा जाएगा? खुद के घर की चीज दे तो उसे देने वाला कहा जाता है। यह तो आपके घर में ही मोक्ष है, वह हम दिखा देते हैं, रियलाइज करा देते हैं, इसलिए देने लेने का होता ही नहीं है, खाली निमित्त है। हेडिंग, मोक्ष याने सनातन सुख। प्रश्नकर्ता, मोक्ष प्राप्त करके करने का क्या? दादाश्री कहते वह मुझे कितने लोग कहते हैं कि मुझे मोक्ष नहीं चाहिए, फिर मैं कहता हूं कि भाई मोक्ष की जरूर नहीं है, परंतु आपको सुख चाहिए या नहीं कि दुख पसंद है? तब वो कहते हैं नहीं, सुख तो चाहिए ही। मैंने कहा सुख थोड़ा बहुत हो तो चलेगा? तब वो कहते हैं कि नहीं, सुख तो पूरे पूरा चाहिए। तब मैं कहता हूं तो आप सुख की ही बात करो ना, मोक्ष की बात जाने दो। मोक्ष क्या चीज है ये कोई समझता ही नहीं है, सिर्फ शब्द से बोलते हैं इतना ही है। लोग ऐसा जानते हैं कि मोक्ष नाम की कोई जगह है कि और वहां जाकर मोक्ष की अपने को मजा आती है, परंतु ऐसा नहीं है वह सब। हेडिंग मोक्ष दो स्टेज से मोक्ष है। प्रश्नकर्ता पूछते हैं मोक्ष का अर्थ साधारण तरह से हम जन्म मरण में से मुक्ति ऐसा कहते हैं? दादर्श कहते हैं हाँ वह सही है, परंतु वह अंतिम मुक्ति है, वह सेकेंडरी स्टेज है। परंतु पहले स्टेज में पहला मोक्ष यानी संसारी दुखों का अभाव का अनुभव हो, संसार के दुख में भी दुख स्पर्शे नहीं, उपाधि में समाधि रहे, ये पहला मोक्ष। और बाद में देह छूट जाता है तब आत्यंतिक मोक्ष है, परंतु पहला मोक्ष यहाँ ही होना चाहिए। मेरा मोक्ष हो गया है, संसार में रहे परंतु संसार स्पर्श नहीं करता, ऐसा मोक्ष हो जाना चाहिए, ऐसा मोक्ष हो जाना चाहिए। वह ये अक्रम विज्ञान से ऐसा हो सकता है। जीवन में ही मुक्ति के हेडिंग में प्रश्नकर्ता पूछते हैं अब ये मुक्ति या मोक्ष है वह जीवन मुक्ति है कि मरने के बाद में मुक्ति है? दादाश्री जवाब देते हैं मरने के बाद की मुक्ति क्या काम की, मरने के बाद की मुक्ति किस काम की? मरने के बाद मुक्ति मिलेगी ऐसा कहकर लोग फंसाते हैं, अरे मुझे यहाँ कुछ दिखा देना, स्वाद तो दिखा, कुछ पुरावा तो दिखा, वहां मोक्ष होगा उसका क्या पता, ऐसा उधारी मोक्ष हमें क्या करने का है, उधारी में मजा नहीं आती है, यानी सब कैश अच्छा, अपने को यहाँ जीते ही मुक्ति होनी चाहिए। जैसे जनक राजा की मुक्ति अपने आपने सुनी है कि ना या नहीं? हाँ सुनी थी। मोक्ष किसका होता है हेडिंग, यानी सही में मोक्ष किसका होता है? पूछते हैं दादाश्री कहते हैं मोक्ष अहंकार का ही होता है। मोक्ष अहंकार का ही होता है, जो बंधा हुआ है उसका ही मोक्ष होता है, जिसको दुख होता है उसका मोक्ष होता है, आत्मा तो मोक्ष स्वरूप ही है। जो बंधा हुआ है और जिसे बंधन का दुख लगता है उसे छूटना है, अहंकार को बंधन का दुख लगता है उस अहंकार को ही छूटना है। अब अज्ञान जब तक जाता नहीं तब तक अहंकार छूटता नहीं, ज्ञानी पुरुष के पास से ज्ञान मिले तब अज्ञान जाता है तब अहंकार का मोक्ष होता है। हेडिंग ज्ञान ही मिटाता है सर्व दुखों को। ये जगत सारा दुख से ही फंसा हुआ है, दुख किसका है? अज्ञानता का। इसलिए सारे संसार में जितने दुख हैं वे सब अज्ञान के कारण हैं। अज्ञानता से राग द्वेष होते हैं जिससे ये दुख है, ये दुख ज्ञान से मिटते हैं और कोई उपाय ही नहीं है, और कोई उपाय नहीं है। इसलिए ज्ञान से सब दुखों का अभाव रहता है। चैप्टर 8 अक्रम मार्ग क्या है, अक्रम मार्ग से अनोखी सिद्धि। प्रश्नकर्ता पूछते हैं परंतु इस संसार में रहकर आत्मज्ञान ऐसे मिल जाता है, ऐसे ही मिल जाता है? दादाश्री कहते हैं हाँ ऐसा रास्ता है, संसार में रहकर इतना ही नहीं परंतु इस वाइफ के साथ रह के भी आत्मज्ञान मिले ऐसा है। अकेले संसार में रहना नहीं है, परंतु लड़के लड़कियों की शादी करके सब काम करके आत्मज्ञान हो सकता है। मैं संसार में रहकर ही आपको वह कर देता हूं। संसार में यानी सिनेमा देखने को जाना ऐसी सब आपको छूट देता हूं। बच्चों की शादी करना, लड़कियों की शादी करना और अच्छे कपड़े पहन के शादी कराना, फिर इससे ज्यादा कुछ दूसरी गारंटी चाहिए आपको? दादा ऐसी सब छूट हो तो जरूर रह सकते हैं। सब छूट यह अपवाद मार्ग है, आपको कुछ मेहनत करने की नहीं है। आपको आत्मा भी आपके हाथ में देंगे, फिर आत्मा की रमणता में रहो और लिफ्ट में बैठे रहो, और आपको कुछ करने का नहीं है, फिर आपको कर्म ही बंधाता नहीं है। एक अवतार के कर्म बंध जाएंगे, वह भी मेरी आज्ञा पालने के लिए है, हमारी आज्ञा में रहने का है, वह सब इसलिए कि लिफ्ट में बैठते समय यदि इधर उधर हाथ करे तो मुश्किल में रख दिया जाएगा ना। हाँ दादा, इसलिए और एक जन्म आने वाला है, सही? पिछला जन्म था और अभी अगला जन्म भी है, परंतु ये ज्ञान ऐसा है कि अभी एक दो अवतार बाकी रहते हैं। पहले अज्ञान से मुक्ति हो जाती है, फिर एक दो अवतार में अंतिम मुक्ति हो जाती है, एक अवतार बाकी रहे ऐसा ये काल है। तो एक दिन आप मेरे पास आना, हम जब एक दिन निश्चित करते हैं तब आने का, उस दिन सब की रस्सी पीछे से काट देते हैं। रोज रोज नहीं काटने का, रोज रोज तो मुझे ब्लेड लेने जाना पड़ेगा। रोज तो सब सत्संग की बातें होती है, लेकिन एक दिन निश्चित करते हैं, उस दिन ब्लेड से हम तुम्हारे एक ही आटा काट देते हैं और कुछ नहीं। फिर तुरंत ही तुम समझ जाते हो कि ये सब खुला हो गया, छाती खुली, ये अनुभव तुमको होता है और फिर तुम खुद ही कहते हैं हो कि मैं मुक्त हुआ, यानी मुक्त हुए हो ऐसा भान होना चाहिए। मुक्त होना ये कोई गप नहीं है, ऐसे तुमको मुक कर देते हैं। जब ज्ञान विधि देते हैं उस दिन क्या होता है, ज्ञानाग्नि से उसके जो कर्म होते हैं वो सारे भस्मीभूत हो जाते हैं। दो प्रकार के कर्म भस्मीभूत हो जाते हैं और एक प्रकार के कर्म रह जाते हैं। जो कर्म भाप के स्वरूप से है उसका नाश हो जाता है, जो कर्म पानी के स्वरूप से है उसका भी नाश हो जाता है, और जो कर्म स्वरूप के जो बर्फ के स्वरूप के कर्म हैं, जो बर्फ स्वरूप के हैं उसका नाश नहीं होता है। बर्फ रूप से वो कर्म तो भुगतने ही पड़ते हैं क्योंकि वो जम गए हुए हैं, कर्म फल देने के लिए तैयार हो गए हैं, वो फिर छोड़ते नहीं हैं। परंतु पानी रूप से और भाप के रूप से कर्म होते हैं स्टीम, वो कर्म होते हैं वो उनको ज्ञानाग्नि से उड़ा देती है। इस ज्ञान मिलते ही एकदम हल्के हो जाते हैं लोग, उनको जागृति एकदम बढ़ जाती है, क्योंकि जहां तक कर्म भस्मीभूत होते नहीं है वहां तक जागृति बढ़ती ही नहीं है। यह बर्फ रूप के कर्म तो अपने को भुगतने ही पड़ते हैं और वह भी पीछे सरल तरीके से भुगते जाते हैं। ये रास्ता हमने बताया है कि भाई वह दादा भगवान के असीम जय जयकार हो बोलना, त्रिमंत्र बोलना, नव कलमे बोलना। हम ज्ञान देते हैं उससे कर्म भस्मीभूत हो जाते हैं और उस समय बहुत आवरण टूट जाते हैं, तब भगवान की कृपा होती है, साथ ही में वो खुद जागृत हो जाता है। ये जागृति फिर जाती नहीं है, जागने के बाद वो जाती नहीं है, निरंतर जागृत रह सकता है इसलिए निरंतर प्रतीति रहती ही है। प्रतीति कब रहती है? जागृति है तो प्रतीति रहती है, पहली जागृति फिर पीछे प्रतीति, वह अनुभव लक्ष्य प्रतीति, यह तीन रहते हैं, रहता है। प्रतीति हमेशा रहती है, लक्ष्य है तो कुछ समय रहता है, कुछ धंधे में या काम में पड़े के फिर वापस लक्ष्य चला जाता है, और काम में से मुक्त हुए के वापस लक्ष्य आ जाता है। और अनुभव तो कब होता है कि काम में से सबसे आप मुक्त होवे, अकेले में बैठे हो, तब अनुभव का स्वाद आता है, और ये अनुभव तो बढ़ते ही जाता है, क्योंकि पहले चंदूलाल क्या थे और आज चंदूलाल क्या है ये समझ आती है। तब यह फर्क किसकी जगह से है, किसकी वजह से है? आत्म अनुभव से। पहले देहाध्यास का अनुभव था और ये आत्म अनुभव है। प्रश्नकर्ता पूछते हैं, आत्मा का अनुभव हो जाता है कि है, प्रश्नकर्ता पूछते हैं, आत्मा का अनुभव हो जाता है या यानी क्या होता है? श्री, आत्मा अनुभव हो गया यानी देहाध्यास छूट गया, देहाध्यास छूट गया यानी कर्म बंधने अटक जाते हैं, उसे संवर रहता है, और ज्यादा क्या चाहिए आपको? प्रश्नकर्ता कहते हैं, मुझे तो ये मार्ग आपके पास से चाहिए बस, मुझे तो ये मार्ग आपके पास से चाहिए बस। दादाश्री, हाँ मार्ग देंगे, मार्ग अकेला ही नहीं, मैं आपको आत्मा हाथ में दूंगा एक दफा। प्रश्नकर्ता, तो मेरा मनुष्य जन्म सार्थक हो गया, फिर बाकी ही क्या रह गया? दादाश्री, बस सार्थक ही हो जाने का है, आपको लाख जन्म में भी नहीं मिलेगा, वह मैं एक घंटे में बिठा दूंगा, Within 1 hour, एक घंटे में, फिर आपको खुद को ऐसा लगेगा कि मैं सेफ साइड में उतर गया हूं, आप खुद बेजा फोड़ी करने जाएंगे तो भी लाख जन्म में ठिकाना नहीं लगेगा। नेक्स्ट हेडिंग, अंधेरे को निकालने में देर कितनी? प्रश्नकर्ता, ज्ञान प्राप्ति के लिए बहुत प्रयोग करने का उपदेश दिया है, विवेक, वैराग्य, मुमुक्षुता वगैरह गुणों प्राप्त करने के होते हैं, तो फिर थोड़े ही समय में ज्ञान कैसे प्राप्त हो सकता है? दादाश्री, ज्ञान के लिए तो देर ही नहीं होती है, वह तो प्रकाश है, अंधेरा हो और एकदम टॉर्च दिखाओ तो, एकदम टॉर्च दबाओ तो उजाला हो जाएगा, देर ही नहीं लगेगी, ज्ञान को कुछ देर नहीं लगती, ज्ञानी पुरुष टॉर्च वाले मिलने चाहिए, वह उजाला कर देते हैं, फिर ठोकर नहीं लगती, ऐसा मिले तब अपना काम होगा, नहीं तो काम नहीं होता है। प्रश्नकर्ता पूछते हैं, तो ये स्थिति प्राप्त करने के लिए उस कक्षा तक पहुंचे तब होता है ना? दादाश्री कहते हैं, कक्षा, उस कक्षा पर तो बहुत दफा पहुंचे हैं, परंतु भ्रांति है ना, उससे आड़ाई और बढ़ती जाती है, भ्रांति से आड़ाई और बढ़ती जाती है, जैसे कक्षा में पहुंचे वैसे आड़ाई बढ़ती जाती है, टेढ़ा जाता है, इसलिए ये वैराग और विवेक तो सब बहुत करके आए, उससे उल्टा ये टेढ़ापन नहीं गया, उसे आड़ाई बढ़ी कि मैं कुछ हूं, मैं कुछ हूं, अरे क्या है तू? अभी ठोकर तो लगती है, जब तक उसे ठोकर लगती है, जब तक उसे ठोकर लगती हो और ऊपर से कहे कि मैं कुछ हूं, यानी यही सब बहुत कर किया है, बहुत किया है सब, सिर्फ खुद को, खुद के स्वरूप का भान ही नहीं किया। आपका अस्तित्व तो है ही, आपका अस्तित्व नहीं है ऐसा नहीं है, परंतु वस्तुत्व यानी सचमुच मैं कौन हूँ उसका भान नहीं है। वस्तुत्व का भान नहीं है, अस्तित्व का भान है। ज्ञानी पुरुष पाप धो देते हैं फिर वस्तुत्व का भान उत्पन्न होता है। वस्तुत्व का भान हो गया यानी पूर्णत्व अपने आप हुआ करता है, फिर कुछ करना नहीं पड़ता है, खुद स्वतंत्र होता है। सिर्फ दृष्टि ही भिन्न है, आप ऐसा देख रहे हो और मैं दूसरी और देख रहा हूं। मैं आपकी दृष्टि बदल देता हूं, इसलिए वह ज्ञानी पुरुष का काम है। भगवान की कृपा के सिवा यही कभी भी नहीं हो सकता, भगवान की कृपा के सिवा ये कभी भी नहीं हो सकता। हेडिंग, आत्मा आत्मा के बीच भेद रेखा। ये अक्रम विज्ञान है इसलिए इतना जल्दी समकित होता है, नहीं तो क्रमिक मार्ग में आज समकित हो सके ऐसा है ही नहीं। यह अक्रम विज्ञान तो बहुत ऊंच प्रकार का विज्ञान है। आत्मा और अनात्मा के बीच यानी खुद की और पराई चीज ऐसा दो बंटवारा कर देते हैं, यहाँ आपका हिस्सा और यह हिस्सा आपका नहीं, और दोनों के बीच में यह आपका हिस्सा और यह हिस्सा आपका नहीं, और दोनों के बीच में लाइन ऑफ डिमार्केशन देते हैं, सरहद रेखा दे देता हूं। फिर पड़ोसी के खेत की भिंडी अपने से खाई नहीं जाती। मार्ग हेडिंग क्रम और अक्रम। तीर्थंकरों का जो ज्ञान है वो क्रमिक ज्ञान है। क्रमिक याने पायरी पायरी, पायरी से चढ़ना, सीढ़ी से चढ़ना। जैसे जैसे परिग्रह कम करते, जैसे जैसे परिग्रह कम करते करते आओ, वैसे वैसे मोक्ष में पहुंच सकते हैं, वो भी बहुत समय के बाद। और ये अक्रम विज्ञान यानि क्या, सीढ़ी नहीं चढ़ने की, लिफ्ट में बैठ जाने का, और बार हवे माल में बढ़ जाने का, ऐसा ये लिफ्ट मार्ग में निकला है। तो ये लिफ्ट मार्ग में जो बैठ गए उसका कल्याण हो गया। मैं तो निमित हूं, इस लिफ्ट में जो बैठा उसका उकेल आ गया। आ जाता है ना, उकेल तो लाना पड़ेगा ना, हमको मोक्ष में जाना ही है, तो लिफ्ट में बैठे उसकी खातरी फिर होनी चाहिए कि ना होनी चाहिए। ऐसी खातरी यानी क्रोध मान माया लोभ होते नहीं है, अर्थ ध्यान रौद्र ध्यान नहीं होते हैं, यानी पूर्ण काम हो गया ना। प्रश्नकर्ता पूछते हैं, क्रमिक मार्ग को धौरी मार्ग राजमार्ग कहते हैं ना, ये तो अक्रम मार्ग खड़ा हुआ है, नहीं तो बड़ा मार्ग तो वो ही है ना। हाँ सही मार्ग तो वही है, तो बहुत ही तप करते करते आगे जाने का, जितना जलेगा उतना उजास आएगा, ये तो तप है ना। प्रश्नकर्ता, वहां तो जलन बहुत होती है ना, जलन के बिना क्रमिक मार्ग में आगे बढ़ ही नहीं सकता है ना। दादाश्री, वह तड़पने का ही मार्ग है अंत तक। यदि यहाँ कचरा सोना छश्यू सोना हो तो उसे तपन करावे तो वह शुद्ध होगा ना, या उसे फ्रिज में रखे तो शुद्ध होगा? नहीं, नहीं होता है। परंतु जैसे क्रमिक मार्ग में नियम है सब, वैसे इस अक्रम विज्ञान में, विज्ञान जो आप लाए उसमें कोई नियम है? सही नहीं है, क्योंकि नियम आवे तो रिलेटिव कहा जाएगा। ऐसा बैठना ये सब रिलेटिव है, अक्रम में नियम ही नहीं होता है। या अब यहाँ कुछ करने का ही नहीं है तो भी लोग नहीं आते हैं, परंतु करे बिना कैसे होता है, वहां वह अटक जाता है। हाँ करे बगैर कैसे होता है, अरे तू किस तरह से करेगा, मैं तुझे करने का कहूंगा तो तू किस तरह से करेगा, तू बंधन में है, तू क्रोध मान माया लोभ राग द्वेष के बंधन में है। परवशता में है, संपूर्ण परवश स्थिति में तू है, तो फिर किस तरह से करेगा? करने की शक्तियां ही नहीं रही है अभी। क्रमिक मार्ग तो तपस्या का मार्ग है, किंतु तपस्या करने की शक्ति यहां अभी रही नहीं है। फिर भी हम बहुत सरल करके मार्ग देने वाले हैं, एकदम सरल करके। यह क्रमिक मार्ग भी बहुत सरल, कम तप से काम चले ऐसा देंगे। प्रश्नकर्ता पूछते हैं, क्रमिक मार्ग ऐसा सरल होगा? दादाजी कहते हैं, हाँ ऐसा मार्ग देंगे। अक्रम मार्ग से जितने बुझे उतने बुझे, वे बुझे वहां तक अक्रम चलने देंगे, फिर वह क्रमिक भी देने का। यह तो मार्ग ही अलग है, इस मार्ग को तो अक्रम मार्ग कहते हैं, इतना ही। बाकी यह तो भगवान की सीधी डायरेक्ट कृपा है, फिर क्या नहीं हो सकता है? तीर्थंकर होते हैं तब डायरेक्ट कृपा होती है। वह जिनको डायरेक्ट कृपा हो जाए तो पार उतर जाते हैं, पर तो वहां क्रमिक मार्ग में कृपा होती है, यानी घर से सब छोड़ के चले जाना पड़ता है, और यहाँ सबको पोटलियां छोड़ के आने का कहा तो कल वापस आऊंगा ऐसे कह के फिर आएगा ही नहीं। पर तो यहाँ तो यह तो अक्रम मार्ग है, हाँ संसार में रहकर काम हो सकता है। ये अंतिम में अंतिम पासपोर्ट निकालने का आया है, ये अंतिम में अंतिम पासपोर्ट निकालने का आया है। अब इसके बाद ये पासपोर्ट निकलने वाला नहीं है, फिर बंद हो जाएगा, फिर तो धर्म चालू रहेगा, और धर्म से यहाँ पुण्य बढ़ता जाए, और अगले जन्म में बहु भुगतना पड़ता है। परंतु ऐसे स्लिप होते जाते हैं, और अंतिम में अंतिम ये मोक्ष मार्ग निकला है, ये अंतिम छालनी है, जितना चला गया उतना सच्चा, और बाकी का सब रहा वह तो अगली चौबीसी तक। 80,000 साल तक तो किसी का कुछ नहीं चलेगा, इसलिए ये अक्रम का अंतिम छालनी। हेडिंग आ रहा है, मुझे मिला वही अधिकारी। प्रश्नकर्ता पूछते हैं, दादा ये मार्ग इतना सरल है तो फिर कोई अधिकार जैसा देखा जाता है या नहीं? किसके भी लिए ये संभवित है? किसी के लिए भी लिए ये संभवित है? किसी के भी लिए ये संभवित है? दादाश्री कहते हैं, हाँ लोग मुझे पूछते हैं कि मैं अधिकारी हूं सही, तब मैं कहता हूं कि मुझे मिला इसलिए तू अधिकारी। ये मिलना साइंटिफिक सर्कमस्टेंशियल एविडेंस है इसके पीछे, इसलिए हमको जो भी कोई मिलता है वही अधिकारी माना जाता है। मिला नहीं वह अधिकारी नहीं है। ये मिलता है कौन से आधार से? वह अधिकारी के आधार से मुझे मिलता है। मुझे मिला और उसको प्राप्त नहीं हुई तो फिर उसका अंतराय कर्म उसको बाधा डालता है। इसमें अंतिम ध्येय हेडिंग, यानी ये कोई शॉर्टकट है अथवा तो कोई शॉर्ट ही रास्ता है? तदर्शी बिल्कुल डायरेक्ट रास्ता, बिल्कुल शॉर्टकट। पर इसका अंतिम ध्येय क्या है? तदर्शी सनातन सुख प्राप्त करने का, स्वतंत्र होने का, निरालंब होने का। सनातन सुख में क्या होता है, उसकी व्याख्या क्या है? दादाश्री जिस सुख के लिए कोई प्रयत्न हमें करना न पड़े, कोई भी जगह पे सहज प्रयत्न से प्राप्त हुआ करे, निरंतर रहा करे, दुख देखने में ही न आवे, उसका नाम सनातन सुख। फिर से, जिस सुख के लिए कोई प्रयत्न हमें करना न पड़े, कोई भी जगह पे सहज प्रयत्न से प्राप्त हुआ करे, निरंतर रहा करे, दुख देखने में ही न आवे, उसका नाम सनातन सुख। हेडिंग, क्रम में करने का और अक्रम में। एक भाई ने एक दफा प्रश्न किया कि क्रम और अक्रम में क्या फर्क है। तब मैंने कहा कि क्रम याने सब कहते हैं कि बुरा छोड़ो और अच्छा करो, सब यही कहते हैं रहते हैं, उसका नाम क्रमिक मार्ग। क्रम याने सब छोड़ने का कहते हैं, ये कपट को छोड़ दो, लोभ को छोड़ दो और अच्छा करो, यही आपने देखा ना अभी तक। और ये अक्रम याने करने का नहीं, करोमी करोसी करोती नहीं। जेब कटी तो अक्रम में कहेंगे उसने काटा नहीं और मेरा कटा ही नहीं, और क्रम में तो ऐसा कहेंगे कि उसने काटा और मेरा कटा। अक्रम विज्ञान ये लॉटरी जैसा है, लॉटरी में इनाम मिलता है, इसमें उसको कुछ मेहनत करनी पड़ती है। एक रुपया उसने दिया था और लोगों ने भी दिया था, लेकिन उसका चल गया, ऐसा ये अक्रम विज्ञान तुरंत ही मोक्ष दे देता है, कैश नगद। हेडिंग, अक्रम मार्ग से अनुभूति। प्रश्नकर्ता, पूर्व जन्म के योग से ही अक्रम मिलता है ना? दादाश्री कहते हैं हाँ, यह एक ही साधन है कि जिससे मैं मिलता हूं, कोटि जन्म की पुण्य जगे तब ये योग प्राप्त होता है। वह सब क्रमिक मार्ग कहा जाता है। क्रमिक मार्ग यहाँ रिलेटिव मार्ग है, रिलेटिव यानी भौतिक फल देता है और मोक्ष की ओर होले होले स्टेप बाय स्टेप ले जाता है। त्याग और तप करते करते अहंकार शुद्ध करना पड़ता है, फिर वहां ऊपर मोक्ष का दरवाजा प्राप्त होता है। क्रोध मान माया लोभ विषयों संसारिक भाव और ये सब में से अहंकार शुद्ध करना पड़ता है, तब वहां मोक्ष का दरवाजा खुलता है। क्रमिक मार्ग तो बहुत मुश्किल है और यहाँ अक्रम मार्ग में तो ज्ञानी पुरुष आपका अहंकार शुद्ध कर देते हैं, अहंकार और ममता दोनों निकाल लेते हैं, फिर रहा क्या, फिर तुम्हारे स्वरूप का अनुभव में आ जाते हो। आत्मा का अनुभव हो जाए तुमको तो काम हो जाता है। अक्रम मार्ग उदय में क्यों? हेडिंग है, क्रमिक मार्ग अल्प विराम है और अक्रम मार्ग ये पूर्ण विराम है। ये तो खुद ही किसी का दफा अपवाद खड़ा होता है। सही राजमार्ग है वह, क्रमिक ही है, स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप। यह तो कोई दफा गूंज होती है और बहुत सारे जीव रह जाते हैं, तो कोई ज्ञानी के मार्फत निकल जाता है। अब अक्रम उदय में कब आए? आचार्य महाराजों ने मुझे पूछा, आपको अक्रम उदय में क्यों आया? मैंने कहा, क्रमिक मार्ग फ्रैक्चर हो गया है, क्रमिक मार्ग का पूरा बेसमेंट सड़ गया है, मुझे कहते हैं उसका पुरावा दो। तो मैंने कहा, क्रमिक मार्ग कब तक चलता है? मन में हो ऐसा वाणी में बोले और ऐसा ही वर्तन में रखे तब तक क्रमिक मार्ग चलता है। तब वो कहने लगे, ये तो सब बदल गया है। मैंने कहा, तो क्रमिक मार्ग फ्रैक्चर हो गया है। अक्रम मार्ग का आश्चर्य। हेडिंग, अभी ये क्रमिक मार्ग का आधार सड़ गया है तब अक्रम खड़ा हुआ है, ऐसे ही अक्रम नहीं खड़ा हुआ। क्रमिक मार्ग का जो बेसमेंट है वो सड़ गया है, वो जब रिपेयर होगा, परंतु रिपेयर होते होते 3000 साल निकल जाएंगे, वहां तक ये अक्रम मार्ग ही चलता रहेगा। फिर इसकी जरूरत नहीं। यह अक्रम विज्ञान तो लंबे समय तक नहीं टिकता। यहां तो क्रमिक के बदले में आया है, क्रमिक मार्ग का बेसमेंट अभी सड़ गया है। प्रश्नकर्ता पूछते हैं, आप लिफ्ट बनाते हैं? नदाश्री, लिफ्ट तो है ही, ये अक्रम मार्ग ही लिफ्ट का मार्ग आया है। यह उनके उनको कहेंगे जाओ सीढ़ी चढ़ के जाओ तो वो कब चढ़ेंगे, इसलिए मैंने कहा दादा के लिफ्ट में बैठ जाओ। ये शेठ लोग के घर पर बहुत जलसा है, सब कुछ है, फिर भी ये मेरे पास पड़े रहते हैं। है। अक्रम से आमूल परिवर्तन। अक्रम विज्ञान तो बहुत बड़ी अजायबी है। ये ज्ञान लेने के बाद आदमी दूसरे दिन बदल जाता है, ये सुनते ही लोग मान जाते हैं, यहां खींचकर आते हैं। यहां पर इन सब लोगों को कहा, भाई तुम तुम्हारा लिख के लाओ। इन सबको कहते फिरते हैं, हर एक को खबर दे दी है कि तुम तुम्हारा लिख के लाओ। तुमको दादा मिलने के पहले जो स्थिति थी और दादा मिलने के पश्चात जो बदल हुआ है वो लिख के लाओ। जगत जब पड़ेगा तब कहेगा ऐसा हो ही नहीं सकता, ये कैसे हो सकता है, एक आदमी पूरा बदल कैसे सकता है। यहाँ एक आदमी नहीं 60,000 लोग बदलते हैं और कायम के लिए। किसी का खराब विचार भी ना आवे, हिंसक भाव ही उड़ जाता है। देख लो कैसे बेंच हो, कैसे चेंज होकर होकर आए हैं थोड़ी ही देर में। देख लो कैसे चेंज होकर आए हैं। अक्रम मार्ग विश्व भर में, अक्रम मार्ग विश्व भर में। ये संयोग तो बहुत उच्च प्रकार का है, ऐसा कोई जगह पे हुआ नहीं है। एक ही दादा अकेले ही काम कर सके हैं और कोई कर नहीं सकता। तो दादा वो फिर दादा की कृपा है ना, वह तो चलते रहेगा। मेरी इच्छा है कि जो भी कोई तैयार हो जाए पीछे मार्ग चलाने वाला चाहिए ना, पीछे मार्ग चलाने वाला चाहिए ना, चाहिए। परंतु मेरी इच्छा पूरी हो जाएगी, दादाश्री कहते हैं। दादा अक्रम विज्ञान चालू रहेगा तो वह निमित्त से चालू रहेगा ना, दादाश्री कहते हैं। अक्रम विज्ञान ही चलने वाला है, अक्रम विज्ञान तो बेस्ट होगा। अभी तो साल दो साल यदि ऐसा ही चला तो सारी दुनिया के सब बातें इसकी ही चलेगी और सब जगह पहुंच जाएगी, क्योंकि झूठी बात छप्पर पे चढ़ के बोलती है कि वैसे सच्ची बात भी छप्पर पे चढ़ के बोलेगी। सच्ची बात का अमल जरा देरी से होता है और झूठी बात का अमल जल्दी होता है। अक्रम से ही स्त्री का भी मोक्ष का हेडिंग है। सब लोग कहते हैं कि मोक्ष पुरुष का ही होता है, स्त्रियों का मोक्ष होता नहीं है। ये मैं उनको कहता हूं कि यहां स्त्रियों का भी मोक्ष होता है, क्यों ना होवे। तब कहते हैं कि उनमें कपट और मोह की ग्रंथि बहुत बड़ी है। पुरुष को इतनी छोटी छोटी गांठ होती है और उनको इतनी बड़ी बड़ी सुरण जैसी गांठ होती है। स्त्री भी मोक्ष में जाएंगी, भले सब लोग ना कहते हैं, परंतु स्त्री भी मोक्ष के लिए लायक है, क्योंकि वो आत्मा है और पुरुषों के साथ में टच में आए हैं, आई है, तो उनका भी सोल्यूशन आएगा, उकेल आएगा। परंतु स्त्री प्रकृति का मोह बलवान होने से ज्यादा टाइम लगेगा। वितराग विज्ञान से मुक्ति का हेडिंग है। हाँ, इसलिए सब अलौकिकता है इस मार्ग की, लौकिकता इसमें रही नहीं है क्योंकि ये रियल है। रियल का अर्थ ही अलौकिक और रिलेटिव का अर्थ ही लौकिक। ये तो कहीं भी सॉल्यूशन ही नहीं मिला हो और बंधन में से मुक्त होना हो उसके लिए ये मार्ग है, नहीं तो और सब स्टैंडर्ड्स तो है ही। आउट ऑफ स्टैंडर्ड होना हो जिसे, उसके लिए यहां मार्ग है। ये अंतर्विज्ञान है और जो जगत में चलता है वह बाह्य विज्ञान है। बाह्य विज्ञान विनाशी है और ये अंतर्विज्ञान अविनाशी है और वह सनातन को प्राप्त कराए ऐसा है। ये विज्ञान है इसलिए विज्ञान से मुक्ति होती है, बाकी का धर्म कितना भी पालो तो भी मुक्ति नहीं होती है। धर्म से तो भौतिक सुख मिलते हैं और फिर और फिसलने नहीं देते हैं। जहां तक चढ़े हो वहां से फिसलना ना पड़े उसका नाम धर्म, और धर्म यानी पकड़ के रखे वो। मोक्ष के लिए तो वितराग विज्ञान चाहिए तो काम होगा। इस समय शास्त्रों में भी ऐसा नहीं कहा, ऐसा ये विज्ञान है। तीर्थंकरों जानते थे कि ऐसा विज्ञान है, मगर वह विज्ञान तो उस काल के लोगों को दिया जाए ऐसा नहीं था। इसलिए आप जो मांगो सो मैं देने के लिए तैयार हूं। निर्विकल्प समाधि नमो वीतरागाय। सर्वज्ञ श्री दादा भगवान का आत्मविज्ञान की ये ऑडियो बुक 2 कैसेट्स में है। दिस इज कैसेट नंबर 2 साइड 2, वितराग विज्ञान से मुक्ति। इसलिए आप जो मांगो सो मैं देने के लिए तैयार हूं। निर्विकल्प समाधि मांगो, हमेशा के लिए चिंता न होवे वैसा मांगो, ये सब गारंटी के साथ दे दूंगा। परंतु तुमको मांगने को आना चाहिए, टेंडर भरने को आना चाहिए। स्त्री के साथ, बच्चों के साथ, संसार में रहते हुए भी हरकत ना आवे, इस तरह से ये विज्ञान मुक्ति देता है। काम निकाल लो, हेडिंग, अपना काम निकाल लो, जब जरूर हो तब। ऐसा आग्रह नहीं है कि तुमको आना ही चाहिए, आपको ठीक लगे तो आना, और संसार पसंद हो, आपको माफिक आता हो, वहां तक वह व्यापार चालू रखो। हमें तो ऐसा नहीं है कि ऐसा ही करो, और हम तो आपको खत भी नहीं लिखने आएंगे। यहां आए हो तो तुमको कहेंगे कि भाई इस तरह से काम उठाओ, इतना ही कहेंगे हम आपको। हजारों साल से ऐसा विज्ञान खड़ा नहीं हुआ है, इसलिए कहता हूं कि पीछे जो कुछ होना हो सो होने दो, परंतु काम निकाल लेने जैसा है। चैप्टर 10, ज्ञानी पुरुष कौन, संत पुरुष ज्ञानी पुरुष का डिफरेंसेस। प्रश्नकर्ता पूछते हैं, ये संतो सब जो हो गए हैं वो वे और ज्ञानी में अंतर कितना है? तो दादाश्री कहते हैं, संत किसका नाम के जो बुरा छुड़ावे और अच्छा पकड़ावे। गलत काम करने का छुड़ाते हैं और अच्छा करने का काम पकड़ाते हैं, उसका नाम संत कहा जाता है। यानी पाप कर्म से बचाए वही संत, हाँ पाप कर्म से बचाते हैं वह संत है, लेकिन पुण्य और पाप दोनों से बचाए उसका नाम ज्ञानी पुरुष कहते हैं। संत पुरुष सच्चे रास्ते पर चढ़ाते हैं और ज्ञानी पुरुष मुक्ति लाते हैं। संतो तो मुसाफिर कहे जाते हैं, मुसाफिर याने खुद चलते हैं और दूसरे मुसाफिर को कहते हैं चलो तुम मेरे साथ, और ज्ञानी पुरुष तो अंतिम स्टेशन कहा जाता है, वहां तो अपना काम हो ही जाता है। संत तो सब बच्चों को पढ़ाने वाला कहे जाते हैं, کنڈر گارڈن کے ہوتے ہیں، فرسٹ سٹینڈرڈ کے ہوتے ہیں، سیکنڈ سٹینڈرڈ کے ہوتے ہیں، سارے سنت الگ الگ طرح کے ہوتے ہیں، اور موکش دینے والے گیانی پروش ورلڈ میں کبھی کبھار ایک ہی ہوتے ہیں۔ سنتوں کے پاس سے آنند ملتا ہے وہ ایموشنل ہوتا ہے، اور جب گیانی پروش کے پاس سے جو آنند ملتا ہے وہ آتما کا آنند کہا جاتا ہے، وہ ایموشنل نہیں ہوتا ہے، اندر ایسی نراکلتا لاتا ہے۔ سچا، بالکل سچا سنت کون جو ممتا رہت ہو، اور سچا گیانی کون کہ جسے اہنکار اور ممتا دونوں بھی نہ ہو۔ اس لیے سنتوں کو گیانی پروش نہیں کہا جاتا، سنتوں کو آتما کا بھان نہیں ہوتا ہے۔ یہ سنتوں تو جب گیانی پروش کو ملیں گے تب ان کا اکیل آئے گا۔ سنتوں کو بھی اس کی ضرورت ہے، سب کو یہاں آنا پڑے گا، چھٹکارا ہی نہیں ہے، نہیں نینا، ہر ایک کی اچھا یہی ہوتی ہے۔ گیانی پروش یعنی ورلڈ کی عجائبی کہی جاتی ہے، گیانی پروش یعنی پرگٹ دیا کہا جاتا ہے۔ ہیڈنگ آتا ہے گیانی پروش کی پہچان۔ گیانی پروش کو پہچاننا کس طرح سے ہے؟ دادا جی کہتے ہیں کس طرح سے پہچانو گے، گیانی پروش تو خود بخود ہی پہچانے جاتے جائے ایسے ہوتے ہیں، ان کی سگندھ ہی پہچانی جائے ایسی ہوتی ہے، ان کا واتاورن اور پرکار کا ہوتا ہے، ان کی بانی اور پرکار کی ہوتی ہے، ان کی بانی اور پرکار کی ہوتی ہے، ان کے شبد پہ سے معلوم ہوتا ہے، ہو جاتا ہے، ارے ان کی آنکھ دیکھ کے ہی معلوم ہو جاتا ہے۔ باقی گیانی کے پاس تو بہت خاطری ہوتی ہے، زبردست خاطری، ان کا ہر شبد شاستر روپ ہوتا ہے، یدی سمجھ میں آوے تو ان کی بانی ورتن اور ونئی منوہر ہوتا ہے، من کا ہرن کر لے ایسا ہوتا ہے، ایسے بہت سارے لکشن ہوتے ہیں۔ گیانی پروش کے لکشن کیا کیا ہوتے ہیں؟ ان میں سوریہ نارائن جیسا پرتاپ ہوتا ہے اور چندر جیسی سومیتا ہوتی ہے۔ دو ویرودی گنوں گیانی پروش میں اکٹھے ہوتے ہیں، اور دوسرا گیانی پروش جیسا ہاسیہ ورلڈ میں کوئی جگہ پہ نہیں ہوتا ہے، وہ مکت ہاسیہ ہوتا ہے، ٹینشن بغیر کا ہاسیہ ہوتا ہے۔ ورلڈ میں ایک بھی آدمی ایسا نہیں ہے کہ جس میں مکت ہاسیہ ہو، گیانی پروش کا ٹینشن رہت ہاسیہ تو سامنے والے کے سارے دکھ بلا دیتا ہے، ایک بار درشن کرتے ہی بلا دیتا ہے۔ گیانی پروش میں بدھی کا بوند بھی نہیں ہوتا ہے، وہ ابود ہوتے ہیں۔ اب بدھی کا بوند نہ ہوئے ایسے کتنے ہوتے ہیں؟ کوئی دفعہ کوئی جنم ہوتا ہے اور تب لوگوں کا وہاں کلیان ہو جاتا ہے، وہاں لاکھوں لوگ تیر کر پار نکل جاتے ہیں۔ گیانی پروش بنا اہنکار کے ہوتے ہیں، گیانی پروش بنا اہنکار کے ہوتے ہیں، بالکل اہنکار نہیں ہوتا ہے۔ اب اہنکار رہت تو اس جگت میں کوئی آدمی ہو ہی نہیں سکتا، اکیلا گیانی پروش ہی اہنکار رہت ہوتے ہیں۔ گیانی پروش تو ہزاروں سال میں ایکار ہوتے ہیں، باقی سنتوں شاستر گنانیوں تو بہت سارے ہوتے ہیں۔ یہاں تو شاستر کے گیانی بہت سارے ہیں، پرنتو آتما کے گیانی نہیں ہوتے ہیں۔ جو آتما کا گیانی ہوتا ہے وہ تو پرم سکھی ہوتا ہے، اور دکھ کنچت ماتر نہیں ہوتا ہے، اس لیے وہاں اپنا کلیان ہوتا ہے۔ جہاں خود خود کا کلیان کر کے بیٹھے ہیں وہ اپنا کلیان کرتے ہیں، خود تیرے وہی اپنے کو تارتے ہیں، نہیں تو خود ہی ڈوبتا ہو وہ کبھی بھی کسی کو تار نہیں سکتا۔ چیپٹر 10، شری دادا بھگوان کون؟ میں اور دادا بھگوان نہیں ایک رے۔ پرشن کرتا ہوں، تو آپ دادا بھگوان کس طرح سے کہلاتے ہو؟ मैं खुद भगवान नहीं हूँ। भगवान को, दादा भगवान को तो मैं नमस्कार करता हूँ। मैं खुद 356 डिग्री पे हूँ और दादा भगवान 360 डिग्री पर है। मुझे 4 डिग्री कमी है, इसलिए मैं दादा भगवान को नमस्कार करता हूँ। वो किस लिए? क्योंकि मुझे तो 4 डिग्री पूरी करनी है, मुझे पूरी तो करनी पड़ेगी ना। 4 डिग्री अधूरी रही, नापास हुआ, लेकिन फिर पार तो हुए बिना छुटकारा है। आपको भगवान होने का मोह है, दादा कहते हैं मुझे भगवान होना ये तो बहुत बोझा रूप लगता है, मैं तो लघुतम पुरुष हूं, इस वर्ल्ड में कोई मेरे से लघु नहीं है, ऐसा लघुतम पुरुष हूं, इसलिए भगवान होने का मुझे बोझा लगता है, ऊपर से शर्म लगती है। भगवान होना ही नहीं है, होना नहीं है तो फिर ये 4 डिग्री पूरी करने का पुरुषार्थ क्यों करने का है? दादाजी कहते हैं वह तो मुझे मोक्ष में जाने के लिए, मुझे भगवान होके निकालने का है, मुझे भगवान होके क्या निकालने का है? भगवान तो भगवत गुण धराते हैं, वो सभी भगवान होते हैं। भगवान ये विशेषण है, कोई भी आदमी उसके लिए तैयार हो गया तो लोग उसे भगवान कहते हैं। प्रश्नकर्ता, आपने एक जगह पर ऐसा कहा है कि ज्ञानी पुरुष को भगवान का विशेषण देना वो उनको हीन पद दिए बराबर है। दादाजी कहते हैं हीन पद की कहा जाता, हीन पद ही कहा जाता है, ज्ञानी पुरुष तो बहुत ऊंची जगह पर होते हैं, भगवान तो यहाँ साधारण आदमी भी कहते हैं कि मैं भगवान हूं। हेडिंग, जगत देखा लेकिन जाना नहीं पूर्ण। ज्ञानी पुरुष को केवल ज्ञान 4 डिग्री से अटका है, आत्मज्ञान की ऊपर गया और केवल ज्ञान का स्टेज तक पहुंचे नहीं, हम केवल ज्ञान में नापास हुए आदमी हैं। दादा 4 अंश यहाँ कौन से 4 अंश है? ये चारित्र मोह जो दिखता है ना आपको, वो भले मुझे उसकी मूर्छा ना हो फिर भी सामने वाले को दिखता है, इसलिए उतने अंश बाद हो जाते हैं। और दूसरा, मुझे जगत समझ में आता है सही, परंतु जानने में अभी नहीं आया है। केवल ज्ञान यानी जानने में आना चाहिए, ये समझ में आ गया है। दादा इसका भेद किस तरह से करना, जानने में नहीं आया है तो? दादा कहते समझ आया है, जानने में नहीं आया। जानने में आया हो तो केवल ज्ञान कहा गया होता, समझ में आया इसलिए केवल दर्शन कहा जाता है। यहां प्रकट हुए 14 लोक के नाथ। हेडिंग, दादा भगवान शब्द प्रयोग किसके लिए किया है पूछते हैं। दादा भगवान के लिए, मेरे लिए नहीं, मैं तो पुरुष हूं। कौन से भगवान? दादा भगवान जो 14 लोक का नाथ है, वे तुम्हारे में भी है परंतु तुम्हारे में प्रकट नहीं हुए हैं, तुम्हारे में अव्यक्त स्वरूप से रहे हुए हैं और यहाँ व्यक्त हो गए हैं। जो व्यक्त हुए हैं वे कल दे सके ऐसे हैं, जो व्यक्त हुए हैं वे फल दे सके ऐसे हैं। एक दफा आप बोले तो काम निकल जाए ऐसा है, परंतु पहचान के बोले तो कल्याण हो जाता है। और संसारिक चीजों की अगर तकलीफ हो तो भी तकलीफ दूर हो जाती है, परंतु उसमें लोभ नहीं करने का, और लोभ करने गया तो फिर उसका अंत ही नहीं आएगा। आपकी समझ में आया कि दादा भगवान क्या है? यहां दिखाई देते हैं वे दादा भगवान नहीं है, तुमको दिखाई देते हैं उसे दादा भगवान जानते हो, तुमको ये दिखाई देते हैं उसे दादा भगवान जानते हो नहीं, परंतु ये दिखते हैं वो तो भादरण के पटेल हैं, मैं ज्ञानी पुरुष हूं और दादा भगवान तो अंदर बैठे हैं ना, अंदर प्रकट हो गए हैं, वे हैं। 14 लोक का नाथ प्रकट हो गया है, वह मैंने खुद देखा है, खुद अनुभव किया है, इसलिए मैं गारंटी से कहता हूं कि वह भीतर में प्रकट हो गए हैं। और ये बात कौन करता है? टेप रिकॉर्ड बात करती हैं, क्योंकि दादा भगवान में बोलने की ताकत नहीं है और पटेल तो टेप रिकॉर्ड के आधार से बोलते हैं। क्योंकि पटेल और भगवान दोनों अलग पड़े, इसलिए वहां अहंकार कर नहीं सकता। ये टेप रिकॉर्ड बोलती है, परंतु आपके मन में मैं बोला ऐसा आपको गर्वरस उत्पन्न होता है। बाकी हमको भी दादा भगवान को नमस्कार करना पड़ता है। हमारे दादा भगवान के साथ अलगपन का व्यवहार ही है। हाँ, व्यवहार ही अलगपन का है, तब लोग ऐसा जानते हैं कि यह खुद ही दादा भगवान है। नहीं, खुद दादा भगवान कैसे हो सकते हैं? ये तो पटेल है भादरण के। चैप्टर 11, श्री सिमंदर स्वामी कौन? वर्तमान तीर्थंकर श्री सिमंदर स्वामी। प्रश्नकर्ता, सिमंदर स्वामी वह कौन है? वह समझाने के लिए कृपा करेंगे। दादा श्री सिमंदर स्वामी अभी तीर्थंकर साहेब हैं। वे दूसरे क्षेत्र में हैं। ऋषभदेव भगवान हुए, महावीर भगवान हुए, ऐसे ये सिमंदर स्वामी तीर्थंकर है जो आज महावीर क्षेत्र में विचरते हैं। महावीर भगवान तो सब बता के गए हैं, परंतु इन लोगों की समझ टेढ़ी है तो क्या करे, इसलिए फल नहीं मिलता है ना। इन लोगों ने नमो अरिहंताणम में सारा अरिहंत पद ही उड़ा दिया है। और तीर्थंकरों कह गए थे कि अब भरत क्षेत्र में 24 बंद होती है, अब तीर्थंकर होने वाले नहीं हैं, इसलिए महाविदेह क्षेत्र में तीर्थंकर हैं, उनकी भजना करो, वहां वर्तमान तीर्थंकरों हैं, तो अब उनकी भजना करना। परंतु ये तो लोगों के लक्ष्य में ही नहीं है, और चौबीसी को ही तीर्थंकर कहते हैं सारे लोग। नवकार मंत्र कब फलित होगा, उसका हेडिंग है, इसलिए मुझे कहना पड़ता है कि नमो अरिहंताणम याने अरिहंत को नमस्कार करो। तब कहते हैं अरिहंत कहाँ है अभी, तब मैं कहता हूँ कि ये सिमंदर स्वामी को नमस्कार करो। सिमंदर स्वामी ये ब्रह्मांड में है, वे आज अरिहंत है, इसलिए उनको नमस्कार करो। अभी भी वे हैं, अरिहंत अरिहंत के तरह होना चाहिए तो अपने को फल मिलता है। इसलिए सारे ब्रह्मांड में अरिहंत जहां भी हो उनको नमस्कार करता हूं, ऐसा समझकर बोले तो उसका फल बहुत सुंदर मिलता है। अरिहंत याने यहां अस्तित्व होना चाहिए, जो निर्वाण हो गए हो उनको तो सिद्ध कहा जाता है। निर्वाण हुए फिर उनको वापस अरिहंत नहीं कहा जाता है। अरिहंत तो चरम शरीरी होने चाहिए, और निर्वाण नहीं होते हैं वहां तक वे अरिहंत है। ख्याल में तो सिमंदर स्वामी ही। लोग मुझे कहते हैं कि आप सिमंदर स्वामी का क्यों बुलाते हो, 24 तीर्थंकरों का क्यों नहीं बुलवाते? मैंने कहा 24 तीर्थंकरों का तो बोलते ही है, परंतु हम उसका प्रमाण सर बोलते हैं। ये सिमंदर स्वामी का ज्यादा बोलते हैं, वे वर्तमान तीर्थंकर कहे जाते हैं, और ये नमो अरिहंताणम उनको ही पहुंचता है। नवकार मंत्र बोलते समय साथ में सिमंदर स्वामी ख्याल में आने चाहिए, तो ही तुम्हारा नवकार मंत्र शुद्ध हुआ कहा जाएगा। ऋणानुबंध भरत क्षेत्र का। प्रश्नकर्ता कहते हैं, पूछते हैं, सिमंदर स्वामी का वर्ण किए। दादाश्री, सिमंदर स्वामी अभी 2.25 लाख साल की उम्र के हैं, वह भी ऋषभदेव भगवान जैसे हैं। ऋषभदेव भगवान सारे ब्रह्मांड के भगवान कहा जाते हैं, वैसे भी सारे ब्रह्मांड के भगवान कहे जाते हैं, वैसे ये भी सारे ब्रह्मांड के भगवान कहते हैं। वे अपने यहाँ नहीं हैं, पर दूसरी भूमि में हैं, महाविदेह क्षेत्र में, जहाँ आदमी का जा सकता नहीं है। ज्ञानियों खुद की शक्ति को बेचते हैं और पूछ के वापस आती है। इस स्थूल देह से वहां नहीं जा सकते हैं, किंतु वहां जन्म होता है तब जा सकते हैं। अगर यहां से वहां की भूमिका के लिए लायक हो गया तो वहां भी अवतार होता है। अपने यहां भरत क्षेत्र में तीर्थंकरों का जन्म होने का बंद हो गया है 2500 साल से। तीर्थंकर यानी अंतिम फुल मून, परंतु वहां महाविदेह क्षेत्र में हमेशा के लिए जन्म, हमेशा के लिए तीर्थंकर जन्म लेते हैं। सिमंदर स्वामी आज वहां हाजिर है, अपने जैसा देह है, सब कुछ है। सिमंदर स्वामी तो 18वें भरत क्षेत्र के तीर्थंकर से तब से है भगवान। सारे तीर्थंकरों ने अनुमोदना की है, उस अनुमोदना के फल स्वरूप उनकी कृपा बरसती रहती है। इसलिए यहाँ का सारा काम जाने उनका ही हो, ऐसी रीत से चलता है। बाकी है तो 20 तीर्थंकरों, परंतु तीर्थंकर को ज्यादा एक्सेप्ट करते हैं सब, परंतु ये तीर्थंकर को तो ज्यादा एक्सेप्ट करते हैं सब। वे ऋणानुबंधी हिसाब होगा ना, पहले का हिसाब होगा वो छूटता है। वितराग में नया हिसाब नहीं होता है, हिसाब पहले का छूटता है। जैसे द्रव्य कर्म में 8 कर्म छूटते हैं, इसी तरह से ये छूटते हैं। उनको सारे तीर्थंकरों ने मान्य किए हुए हैं, और अभी हम उनको मान्य करें तो हमें फल मिलता है। तो दादा, जो हाल में अभी विचर रहे हैं ना? हाँ, विचर रहे हैं, अभी बहुत समय तक रहने वाले हैं। यहां पर तार ज्वाइन कर ले तो काम निकल जाए। दादा, सिमंदर स्वामी साक्षात हो ऐसा अनुभव होता है? हाँ, होता है। वे साक्षात है, वो वे साक्षात ही है। संपूर्ण वीतराग ही है, तीर्थंकर ही है, परंतु असल जो है वह तीर्थंकर नाम कर्म के आधार से ये अभी कर्म भुगत रहे हैं। सिमंदर स्वामी तो कैश नगद कहे जाते हैं, दूसरे क्षेत्र में हो परंतु हाजिर है ना वे। प्रत्यक्ष दादा भगवान की साक्षी में प्रश्नकर्ता पूछते हैं, हम सिमंदर स्वामी को नमस्कार करते हैं तो दादा भगवान की साक्षी में बोलते हैं, और सिमंदर स्वामी को नमस्कार करता हूं वैसा डायरेक्ट बोले तो उसमें कुछ फर्क पड़ता है? दादाजी कहते हैं, यहां दर्शन करने के पश्चात उसका फल अच्छा मिलता है। प्रश्नकर्ता, दादा मिलने से पहले भी सिमंदर स्वामी को नमस्कार करता हूं वैसा बोलते थे, और दादा भगवान के मिलने के पश्चात बोलते हैं, उसमें क्या फर्क गिरता है? दादाजी कहते हैं, बहुत फर्क पड़ता है। तो दादा, जरा डिटेल में समझाओ ना। दादाजी कहते हैं, आपने राजा को देखा न हो और राजा को नमस्कार किए रखो, परंतु प्रधान ने जो राजा को देखा है तो वो प्रधान की हाजिरी में कहो तो फर्क नहीं पड़ता? वही खबर देता है कि तुम्हारा नाम का रटन करता है, वहां खबर देता है कि तुम्हारा नाम का रटन करता है। आपको समझ में आई बात? उसका फल तो मिलेगा ही, हमेशा बड़े पुरुषों का नाम लो तो फल मिलता है। नाम देने से तो फल मिले बगैर रहता ही नहीं। जैसे गलत आदमी का नाम दे तो गलत फल मिलता है, बुरा फल मिलता है, और अच्छे का अच्छा फल मिलता है। परंतु प्रत्यक्ष हो तो फल अनेक अनेक गुना मिलता है, और परोक्ष हो तो थोड़ा मिलता है। वह तो फोन करना हो तो फोन का माध्यम चाहिए तो फोन पहुंचता है, ऐसा ये माध्यम है। दादा भगवान की साक्षी में बोलो, महावीर भगवान अभी आज यहाँ दिल्ली में हो, परंतु यहां से नाम दे तो पहुंच जाए। ऐसा ये भी पहुंच जाता है, यहां जरा आधे मिनट फोन देर से पहुंचता है परंतु पहुंच जाता है। इसलिए सिमंदर स्वामी के दर्शन करना, हे अरिहंत भगवान आप ही सच्चे अरिहंत हो अभी, ऐसा करके नमस्कार करना, नमो अरिहंताणम, नमो अरिहंताणम, नमो अरिहंताणम। हेडिंग, क्षेत्र परिवर्तन किस तरह से। प्रश्नकर्ता पूछते हैं, सामान्य तौर से यहां से सीधा मोक्ष में जा नहीं सकते, महावीर क्षेत्र में जाकर फिर वहां से मोक्ष जा सकते हैं, ऐसा किस तरह से होता है। तदर्श कहते हैं, यहां से चौथे आर्य के आदमी जैसा स्वभाव हुआ तो यहां चौथा आर्य जहां चलता हो वह क्षेत्र उसको खींच लेता है, और वहां से पांचवा आरा जैसा हो गया हो तो यहाँ पांचवे आरे में आ जाता है, ऐसा ये क्षेत्र का स्वभाव है। किसी को ले जाना या लाना पड़ता नहीं है, क्षेत्र स्वभाव से ये लोग तीर्थंकर के पास पहुंचने वाले हैं सब। दर्शन मात्र से ही पूर्णा होती, हमारा सिक्का लगने के पश्चात तीर्थंकर अकेले को ही देखने के बाकी रहते हैं। ये दादा से आगे का दर्शन वह है और उनका दर्शन किया यानी मुक्ति, और बाकी सब तो यहाँ ज्ञानी पुरुष ने तैयार किया है, अब वह बरख चिटकाने का रहा। मिठाई कौन करता है और बरख कौन चिटकाता है। अपने लिए तो मुख्य वस्तु यह कि सिमंदर स्वामी का नाम लेंगे तो वर्तमान तीर्थंकर का नाम लिया तो बहुत हो गया, इतना ही अपना भावार्थ है। चैप्टर 12 अक्रम मार्ग चालू ही है, पीछे ज्ञानियों की वंशावली, हमारे पीछे ज्ञानियों की वंशावली रख के जाएंगे, हमारे वारसदार रख के जाएंगे और उसके बाद ज्ञानियों की लिंक चालू रहेंगी। इसलिए सजीवन मूर्ति को ढूंढना, उनके बगैर उकेल आए ऐसा नहीं है। मैं कुछ लोग को मेरे हाथ से सिद्धि देने वाला हूं, फिर पीछे चाहिए या ना चाहिए, पीछे के लोगों के को मार्ग तो चाहिए ना, जिसको जगत स्वीकारेगा उसका चलेगा। इसका हेडिंग है, दादा आप कहते हो कि मेरे पीछे 40-50 हजार रोने वाले होंगे परंतु शिष्य एक भी नहीं होगा, यानी आप क्या कहना चाहते हैं। दादा जी कहते, मेरा शिष्य कोई नहीं होगा, ये कोई गादी नहीं है, गादी हो तो वारसदार होगा, आप पितराई होकर वारसदार होने को आएंगे, यहां तो जिसका चलेगा उसका चलेगा, जो सबका शिष्य होगा उसका काम होगा, यहाँ तो लोग जिसको स्वीकारेंगे उसका चलेगा, जो लघुतम हुआ उसको जगत स्वीकारेगा। होगी प्रत्यक्ष परंपराएं। हेडिंग प्रश्न, आपके पास लगभग सब क्रमिक में से यहाँ आए हैं अक्रम में, अब अक्रम में आपके पास आने के पश्चात सबको खुद की तरह से अनुभव हुआ, परंतु दादा अक्रम के अंदर विशेषता ये है कि प्रत्यक्ष पुरुष मिल गए। अब दादा ये प्रत्यक्ष मिल गए, ये प्रत्यक्षता तो कुछ समय के बाद प्रत्यक्षता तो होगी नहीं, होगी ही नहीं ना। हाँ बरोबर है, अब जब प्रत्यक्षता नहीं होगी ज्ञानी पुरुष की, तब अक्रम मार्ग से जो सब आए हैं और प्रत्यक्ष का योग जिसको हो गया है उनकी बात बाजू पर रखता हूं, परंतु बाद में अक्रम में जो सब आए होंगे उस समय प्रत्यक्ष का योग तो नहीं होगा ना। होगा ना, प्रत्यक्ष पुरुष का योग उनको हरेक को मिलेगा, वो तो सब मिलेगा, आगे चालू रहने वाला है। चालू रहेगा किस तरह से दादा, वो सब चालू रहने वाला है, समझ में आया ना। परंतु अक्रम मार्ग में यह प्रत्यक्ष पुरुष की जरूरत तो होगी ना। तो दादा शिष्य क्या कहते हैं, प्रत्यक्ष बिना तो चलता ही नहीं है ना। तो प्रश्न करता है प्रत्यक्ष बगैर तो चलता ही नहीं है ना। श्री कहते हैं आगे अक्रम मार्ग नहीं तो बंद हो जाता है। प्रश्न करता है आगे अक्रम मार्ग नहीं तो बंद हो जाएगा, इसलिए प्रत्यक्ष पुरुष रहेंगे। दादाश्री कहते हैं यहां बड़ा गुना बड़ा गन्ना हो उसमें से एक या दो टुकड़े अच्छे निकले, बाकी का सारा गन्ना सड़ चुका हो तो क्या वह सारे गन्ने को फेंक देना या खाना? वो तो सारे सारे दे देना पड़ेगा ना। हाँ पेटी पैक आपकी वापस लेंगे, जाओ पूरे पूरी तुम्हारी वापस ले ले जाओ, दूसरे किसी को देना हमने बहुत खाई है। ऐसा ही ये क्रमिक मार्ग है ना, वो सड़े हुए गन्ने जैसा हो गया है, सड़ा हुआ गन्ना हो ऐसा क्रमिक मार्ग पूरा ही हो गया है। तो क्या करेंगे, आदमी घबरा जाता है, कुछ पड़ी नहीं है लोगों को, लोगों का मोह बाजार फुल फ्लेज में चलता है ना। मन में जैसा हो ऐसा ही वाणी में बोले और ऐसा ही वर्तन में आवे तो चलता है, नहीं तो क्रमिक मार्ग बंद हो जाता है। आपकी पास से सुना था दादा, क्योंकि कितनी बार हमारी मुसीबत ऐसी हुई है कि कृपालुदेव ऐसा कहते थे, कृपालुदेव ऐसा कहते थे, ऐसा करके सबों ने कृपालुदेव क्या कहते थे ऐसा कहकर हरेक को खुद का अज्ञान दूसरों में घुसाया। अब यह जो दादा है उनको के लिए मैं आपको पूछूं कि आपको आपके बाद भी ये संभावना खड़ी ना हो जाए, इसके लिए दादा कि अक्रम मार्ग के अंदर प्रत्यक्ष पुरुष हरेक को मिल जाएगा दादा? यह तो कुछ समय तक यह अक्रम मार्ग अच्छी तरह से मिलता रहेगा सब। दादा कहते कुछ समय, हाँ कुछ समय तक, क्योंकि जितना जत्था यहां से चुन चुन कर भेज देने का है उतना जत्था चुना जाएगा, बाद में खलास हो जाएगा, फिर लायक जत्था रहा नहीं जाना, इसलिए जत्थे के लिए ही है ये। प्रश्नकर्ता पूछते हैं हाँ पूर्ता जत्थे के लिए ही ये, आप जो अक्रमिक मार्ग कहते हैं वो इसके लिए ही है ना। अच्छा और चैप्टर 13 आत्मदृष्टि होने के पश्चात, आत्मा प्राप्ति के लक्षण, ज्ञान मिलने के पहले तुम चंदूलाल थे और अभी ज्ञान लेने के बाद शुद्ध आत्मा हुए, उसमें कुछ अनुभव में फर्क लगता है? हाँ दादा, सुबह में उठे तब से या दोपहर के पश्चात आप पश्चात रहता है, यानी पहले से अलग लगता है दादा। रात को नींद में से उठो तो पहले क्या याद आता है दादा पूछते हैं? शुद्ध आत्मा। हाँ रात को सो गए और जागते ही तुरंत आत्मा सामने आवे तो जानना कि आत्मा प्राप्त हुआ है, ये उसकी खातरी हो गई। इसलिए अब ज्ञानी पुरुष की आज्ञा में रहने का है, ये आज्ञा वही सबसे बड़ी चीज है। हम ज्ञान देते हैं फिर वास्तविकता ओपन होती है, फिर खुद पुरुष होता है, मैं शुद्ध आत्मा हूं ऐसा भान होता है, हम सारे पाप भस्मीभूत कर डालते हैं, दिव्य चक्षु देते हैं, यानी सब में शुद्ध आत्मा दिखता है, इसलिए ऐसा पद दिया, बाद में आत्मयोग दिया, बाद में आपको पांच आज्ञाएं देते हैं। वर्ते निज भाव निरंतर, मैं शुद्ध आत्मा हूं यानी आपको कितना समय रहता है ये भान, आपको कितना समय रहता है दादा एकांत में अकेला बैठा हो तब? हाँ फिर कौन सा भाव रहता है तुमको, मैं चंदूलाल हूं ऐसा भाव आता है कोई समय आपको? रियली मैं चंदूल हूं ऐसा कोई दिन भाव हुआ है दादा? ज्ञान लेने के पश्चात नहीं हुआ है दर्शक। तो ये तुम शुद्ध